जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धाम जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धाम ब्रज जन रंजन जय यशोदनंदन जय ब्रज जन रंजन जय यमुना किरावन चारी जय कुंज बिहारी जय हो जय हो जय हो जय यमुना किरावन चारी जय कुंज बिहारी नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज गचार्य अष्टोत्तर सहस्री श्री मधेश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनिताय की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलिदेव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। श्री कात्यायनी व्रत महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरियस टू सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरियस टू सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरियस टू सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरियस टू श्री गुरु एंड गौरांगा हरे कृष्णा। तो आज आप लोग जानते हैं कुछ विशेष दिन है। आज कुछ विशेष दिन है कात्यायनी व्रत की समाप्ति नहीं, शुरू नहीं, हम 15 तारीख को आए थे पिछले महीने, तो शुरू नहीं हुआ था, चल रहा था। वो तो 6 नवंबर को शुरू हुआ था, तो हम आए थे 15 नवंबर को, ठीक है। तो आज समाप्ति है कात्यायनी व्रत की। तो आज बहुत पवित्र दिन है, मार्ग शीर्ष महीने की पूर्णिमा है ना। तो आज जो वृषी कन्याओं ने कात्यायनी का व्रत किया था पूरे महीने भर, आज उनको उस व्रत का फल प्राप्त हुआ है ना। तो भगवान ने उनके वस्त्रों का अपहरण किया, तो ये जो है बहुत ही दिव्य लीला है जो आज के दिन भगवान ने की, और हम सुन रहे हैं कात्यायनी देवी के सामने, यहाँ कात्यायनी देवी ही हैं है ना, तो वो भी सुनेंगी। तो ये जो कथा है अनेक शास्त्रों में प्राप्त होती है, आज हम सुन रहे हैं इस कथा को आनंद वृंदावन चंपू से। आनंद वृंदावन चंपू ये ग्रंथ बहुत दिव्य ग्रंथ है, और इसमें इस कथा का वर्णन 37 पेज में है ना, बहुत विस्तृत कथा है। तो हम उसका कुछ हिस्सा सुनेंगे। तो हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं कि जिस समय वो कन्याएं यमुना के तट पर वस्त्र रख करके वो यमुना जी में प्रवेश कर रही हैं और विहार कर रही हैं है ना। तो अब वो तो विहार कर रही हैं, अब इसी दिन पहले से ही कल उस जगह पर गोचारण करेंगे, इस प्रकार के निश्चित विचार से गोचारण के स्थल की ओर श्री कृष्ण चल दिए। एक दिन पहले से ही कृष्ण ने निश्चित किया था आज के दिन के लिए कि गोचारण करेंगे, आज कौन से स्थान में गोचारण करेंगे, हाँ यहाँ चीरघाट में है ना कृष्ण। तो इस स्थान की ओर चल दिए और श्री कृष्ण के दर्शन की प्रसन्नता से पक्षियों का जो कुल है आकाश को व्याकुल कर रहा है, पक्षी लोग जो है आकाश को व्याकुल कर रहे हैं प्रसन्नता के कारण है, व्याकुल कर रहे हैं मतलब शोरगुल कर रहे हैं, पक्षी लोग शोरगुल कर रहे हैं है ना। तो कृष्ण के दर्शन की प्रसन्नता से और कपट से रहित प्रेम वाले बलदेव आदि प्रिय सखा, सुने ध्यान से, कपट से रहित प्रेम करने वाले बलदेव आदि सखा गवों के पीछे पीछे आ रहे हैं, तो पीछे रह गए और कृष्ण पहले आ गए है ना। तो बलदेव आदि सखा जो है कपट से रहित प्रेम करने वाले हैं है ना, और कृष्ण कपट पूर्वक आ गए, कृष्ण के अंदर कपट है। बलदेवादी सखा कपट रहित प्रेम करते हैं, नहीं कृष्ण के अंदर कपट है ना, इसलिए पहले आ गए। जब योगेश्वरों के भी ईश्वर श्री ब्रजराज किशोर प्रातःकाल अपने मुख की अमृत से मुरली को भली भांति धोने लगे, मुँह से अमृत निकल रहा है ना, तो मुरली धुल रही है, उससे संचार हो रहा है अमृत का, अर्थात मधुरता पूर्वक मुरली बजाकर स्वतंत्र होकर भी कात्यायनी व्रत परायण कन्याओं के द्वारा उनके प्रेम के वशवर्ती होकर और उनकी उत्कंठा की ओर देख करके, ब्रज की कन्याओं की उत्कंठा, ब्रज की कन्याओं की उत्कंठा है क्या, कृष्ण का दर्शन करने की। तो उनकी उत्कंठा को देख करके उन कन्याओं के गुणों को अपने कंठ का आभरण बनाया, मतलब गुणगान कर रहे हैं ना भगवान, और गोचारण के सुख को और मित्रों के संग के सुख को छोड़कर किसने इनका है इनको दर्शन देने के लिए उन्होंने किसने अपना सुख छोड़ दिया, गोचारण का सुख छोड़ दिया और मित्रों के संग का सुख छोड़ दिया, है ना? क्यों? इनको सुख देने के लिए और इनका अनुराग वर्ष भर से बढ़ चुका था। एक साल से इनका अनुराग बढ़ता गया। किनका? इन ब्रज की कन्याओं का। उन कन्याओं की उत्कंठा के कारण कृष्ण यहां पर आए। कृष्ण के साथ आनंद से परिपूर्ण कठपुतली किसी आकृति वाले विशुद्ध अंतःकरण वाले छोटे छोटे चार बालक भी आए साथ में। कृष्ण के साथ छोटे छोटे चार बालक भी आए हैं, विशुद्ध अंतःकरण वाले और खेलने की कठपुतली किसी आकृति वाले छोटे छोटे चार बालकों के साथ हैं। और कृष्ण अलक्षित हैं किनसे? बलराम, सुबल, सुदामा, श्रीदामा आदि सखाओं से अलक्षित होकर आए। इन सखाओं को कुछ ज्ञात नहीं है कि कृष्ण कहाँ चले गए हैं। और कात्यायनी देवी के वरदान रूप भार को हल्का करने के लिए आए। कात्यायनी देवी ऊपर वरदान का भार है, है ना? तो उसको हल्का करने के लिए आए, यानी खुद ही हम वर देंगे, मतलब कृष्ण स्वयं ही वरदान देने के लिए। तो कात्यायनी के ऊपर वरदान का जो भार है उसको हल्का करने के लिए आए और उनके उन कन्याओं के सौभाग्य के भार को बढ़ाने के लिए आए और अपने चातुर्य के भार को प्रकट करने के लिए आए। अपने चातुर्य के भार को प्रकट करने के लिए आए और वहीं पर गुप्त रूप से चले आए। गुप्त रूप यानी कन्याओं को पता नहीं चला, वो खेल रहे हैं, जल में खेल रहे हैं, गुप्त रूप से आए। तो चार सखा जो कृष्ण के साथ आए हैं वो छोटे छोटे चार सखा, दामा, श्री सुदामा, वसुदामा, किंकिणी, ये चार सखा श्री कृष्ण के साथ वस्त्र हरण लीला में आए थे। तंत्र शास्त्र के विद्वान इन्हें कहते हैं श्री कृष्ण के मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। चार अंतःकरण होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो कृष्ण के ही मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये हैं चार सखा। तो यही चारों कुमार चार पांच वर्ष के थे, परस्पर मित्रता के कारण हर्ष को धारण करने वाले थे और श्री कृष्ण से प्रतिदिन प्रेम की वर्षा प्राप्त करते रहते थे। कौन? ये चार बालक हैं। अतः यमुना तट पर चलने के आरंभ से ही भैया हम कहाँ चलें, वो ऐसे कृष्ण के पीछे पीछे आ गए, भैया हम कहाँ चलें। इस प्रकार श्री कृष्ण से पूछते हुए चलते चलते उनके साथ साथ वहां पर चले आए। ये ब्रजराज किशोर यहाँ आकर कृष्ण होकर भी रक्त हो रहे हैं। रक्त मतलब अनुरक्त हो रहे हैं। रक्त का मतलब एक होता है लाल रंग, तो कृष्ण और कृष्ण का मतलब सांवले, तो कृष्ण होकर के भी रक्त हो रहे हैं, मतलब सांवले होकर के भी क्या हो रहे हैं, लाल हो रहे हैं। लेकिन दूसरा रक्त का मतलब अनुरक्त, यानी इन कन्याओं में अनुरक्त हो गए। ये श्याम सुंदर होकर भी इन गोप कुमारियों में अनुरक्त थे। उसके बाद श्री कृष्ण ने अपने केसों को बांधा। अब चोरी करने की तैयारी कर रहे हैं, हैं कि चोरी का पता ना चले, इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहली तैयारी में क्या किया, अपने बालों को बांधा है, ये बाल भी बाधा पैदा करेंगे ना चोरी में। तो बालों को बांधा, केसों को बांधकर पीतांबर की फेंट कसी। चोर जो है सब तैयारी कर रहा है ना, तो पीतांबर की फेंट कसी, नूपुरों को गूंगा बनाया, नूपुरों को गूंगा बनाया, कि नूपुरों की आवाज होगी ना पैरों में, नूपुरों को गूंगा बनाया और अपनी भौहों के टेढ़ेपन के सारों से अपने साथ में आने वाले सखाओं की बातचीत को बारंबार रोका। भौहों के सारे से कि बिल्कुल चुप रहना, आवाज नहीं करना बिल्कुल, चोरी करने का समय। शरीर को झुकाकर कातर नयन होकर अपने शरीर को अपने शरीर के द्वारा छिपाते हुए गुप्त रूप से मुस्काकर कन्याओं के वस्त्र चुरा लिए। इस प्रकार अपने को चोर बनाकर और चंचलता, सरलता, अतिशय साधुता को अंगीकार किया उन्होंने। अपने को चोर बना करके भी ये इनका बहुत बड़ा त्याग है। भगवान चोरी करें तो भगवान का ये भी बहुत बड़ा गुण माना जाता है, है? कि भगवान हर चीज के मालिक होकर के भी चोरी करें तो ये भी उनकी साधुता है। आप समझे, चोर चोरी करता है तो उसका दोष होता है, ये भगवान है? जो है हर चीज के स्वामी होकर के भी अगर चोरी करें तो उनका एक गुण माना जाता है, उनकी साधुता है, उनकी सरलता है, है? श्री कृष्ण अपार गंभीर बनकर निर्भय होकर शक्ति पूर्वक संपूर्ण वस्त्रों को चुराकर और शरीर के द्वारा वस्त्रों को छिपाकर सभी सखाओं को गूंगा बनाकर धीरे धीरे कदम्ब की शाखा पर चढ़कर उन गोपियों के सम्मुख प्रकाशित हो गए। अब अपने को प्रकट किया कि मैं यहाँ, मैं कहा मैं यहाँ, उस समय जो है भगवान जो है अपने को प्रकट कर रहे हैं कि देखो मैं कहा, मैं यहाँ। उसके बाद सौभाग्य लक्ष्मी से प्रशंसित ये कन्याएं, इनका सौभाग्य है भगवान ने वस्त्र चुराए, भगवान जिसके वस्त्र चुराए उसका कितना बड़ा सौभाग्य है। सौभाग्य लक्ष्मी से प्रशंसित लोकातीत वे कन्याएं यमुना के जल से उतरने की इच्छा से युक्त होकर, यमुना के जल से उतरने मतलब बाहर आने की, तट में आने की इच्छा से युक्त होकर वस्त्रों से रहित तीर पर दृष्टिपात करके, तट पर क्या, वस्त्रों से रहित तट पर दृष्टिपात करके चकित होकर ये विचार करने लगी, हाय ये क्या हुआ। विचार करने लगी, क्या विचार करने लगी, हाय ये क्या हुआ, हमारे वस्त्र किसने चुरा लिए। यहां पर तो सूर्य की किरणों के बिना और कोई आया ही नहीं, यहां सूर्य की किरणें ही आई हैं। अंधकार के बाद जो है इस स्थान में कुछ अगर कोई अगर आया है तो सूर्य की किरणें ही आई हैं। हाँ, केवल आकाश में विचरण करने वाले पक्षियों के चरणों के चिन्ह अवश्य हैं, पक्षियों के चरणों के चिन्ह हैं, और किसी के पैरों के चिन्ह भी नहीं है। मतलब चोर ने अपने पैरों के चिन्ह भी मिटा दिए, तो किसी के पैरों के चिन्ह भी नहीं है। इसलिए किसी व्यक्ति के चरण चिन्हों के अभाव के कारण यह अनुमान होता है कि हमारे वस्त्र किसी देवता ने ही चुरा कर कहीं पहुंचा दिए, किसी देवता ने। अगर पैरों के चिन्ह नहीं तो कौन कौन आया, देवता ही आया होगा। क्यों? क्योंकि देवता ही धरती पर चरण नहीं धरते हैं। जब देवता चलते हैं तो दो अंगुल ऊपर उनके पैर होते हैं जमीन से, तो जमीन में पैरों के निशान नहीं पड़ते देवताओं के। देवताओं की पहचान है क्या, देवता चलते हैं तो उनके पैर जमीन के ऊपर नहीं होते हैं, जमीन से दो अंगुल ऊपर होते हैं देवताओं के, तो जमीन में पैरों के निशान नहीं बनते हैं। तो किसी देवता ने ही हमारे वस्त्रों को जो है कहीं अन्य स्थान पर पहुंचा दिया है, अतएव यहां पर पद पद के दर्शन का भाव है। इस प्रकार चकित हुए चंचल नेत्रों से चारों ओर देखती हुई एवं अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों पर विचार करती हुई, अब तर्क वितर्क बहुत, उन कन्याओं के नेत्र जो है ऊपर उछल उछल कर फरफराती हुई मछलियों की तरह हो गई। मछलियां जैसे व्याकुल हो जाएं, उनके नेत्र व्याकुल हो गए, चारों तरफ देख रही हैं, समस्त दिशाओं की ओर उनके मुख व्याप्त हो गए, सब दिशाओं की तरफ देख रहे हैं और जल में हैं, जल से बाहर भी नहीं निकल सकती। उसके बाद इन कन्याओं के शरीर में अतिशय विकलता की प्रबलता हो रही है, ये विचारते हुए कि भगवान तो दया के सागर हैं, है ना, तो भगवान थोड़े कष्ट देना चाहते हैं, तो भगवान विचार कर रहे हैं कि इनको बहुत चिंता हो रही है। तो भगवान तो चिंता दूर करने वाले हैं, चिंता हरण है, तो भगवान क्या करते हैं, जब देखते हैं श्री ब्रजराज युवराज करुणा से युक्त होकर यमुना के जल में प्रविष्ट हुई। उन सुकुमारी कुल कुमारियों के प्रति परम सुंदर मधु से भी मधुर स्वर से युक्त स्वर्ग में भी जो अमृत ना मिले वो अमृत वाणी बोले। भगवान की वाणी में कितना अमृत है तो स्वर्ग में भी नहीं मिलता। स्वर्ग में जो अमृत नहीं मिलता है वो अमृत भगवान की वाणी में मिलता है। भगवान अमृत से भी मधुर स्वर्ग में भी जो ना प्राप्त हो ऐसे अमृत भरी वाणी के द्वारा बोले। श्री कृष्ण समय भूतलवासी प्राणी मात्र के संताप को हरने वाले थे। अनेक हार पहने हुए थे एवं साथ में आए हुए बालक रूप मित्रगण को अतिमय हास परिहास से विशेष हंसा रहे थे। अपने मित्रों को हंसा रहे थे। अत्यंत प्रिय कदम्ब वृक्ष की मोटी शाखा पर चढ़ने से उत्पन्न होने वाली शोभा से युक्त थे। किसी दूसरे का सहारा ना लेने के कारण स्वाधीन थे। अपने स्वाभाविक तेज के द्वारा सूर्य को भी तिरस्कृत कर रहे थे। श्री कृष्ण बोले, हे कन्याओं, देखो तुम सब अपने मन की आशंका से चिंता मत करो, क्योंकि तुम सब मेरी लीला में लोभ रखती हो। क्या तुम चिंता मत करो, तुम्हारे वस्त्रों का जो अपहरण है वो किसने किया है? जिसके लिए तुम चाहती हो, जिसकी लीला में तुम लोभ रखती हो, मैं वही हूं तुम्हारे वस्त्रों का अपहरण करने वाले। अतः मैंने ही कौतुक के कारण तुम्हारी मनोवृत्ति को हित पहुंचाने के लिए तुम्हारे वस्त्र हरण कर लिए हैं। इसलिए अपने अपने हार हमें दे करके सुख पूर्वक मेरी ओर आ आकर सभी सम्मिलित होकर अथवा एक एक होकर अपने अहंकार को छोड़कर, क्या अहंकार को छोड़कर अपने अपने श्रेष्ठ वस्त्रों को ग्रहण कर लो। एक एक आकर के या एक साथ आकर के अहंकार छोड़ करके अपने वस्त्रों को। अहंकार क्या है? मैं शरीर हूं, है ना, तो यह अहंकार है। उसी के कारण लज्जा आ रही है, है? तो भगवान कह रहे हैं अहंकार को। उसके बाद मानो कात्यायनी देवी के व्रत से जो है उनको फल प्राप्त हो गया। व्रत का जैसे फल प्राप्त हो गया है वो जो है सुख उनको प्राप्त हुआ भगवान की उस वाणी से। श्री कृष्ण के लोभ सूचक उस वचन को श्रवण करके व्रत के परिश्रम से मुक्त हो गई। एक महीने के व्रत का जो परिश्रम था उनका दूर हो गया। भगवान की वाणी में इतना रस, इतना ही मधुरता है कि व्रत का परिश्रम ही दूर हो गया। देखो मतलब भगवान ने वस्त्रों का हरण जो किया तो ये उनको कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं किया, उनको सताने के लिए नहीं किया, उनको सुख पहुंचाने के लिए किया, है ना। तो व्रत के परिश्रम से मुक्त हो गई और सौभाग्य रूप उनको फल प्राप्त हुआ। हर्ष के द्वारा जल में ही विद्यमान वे कन्याएं जाड़े के भय को कुछ ना गिनकर कंठ तक जल में डूबी रहीं, कंठ तक जल में डूबी रहीं, और क्षण भर तो उत्तर देने से भी वो चुप रही, उत्तर नहीं दिया। एक क्षण भर कुछ उत्तर नहीं दिया। एक क्षण कितना होता है? 4 मिनट। तो 4 मिनट तक कुछ उत्तर नहीं दिया और लज्जा से नीचे मुख वाली होकर श्री कृष्ण के उस वाक्य को असत्य समझकर अर्थात प्रत्युत्तर देने पर भी वस्त्रों की प्राप्ति की संभावना नहीं है। क्या क्या माना कि अगर हम कुछ उत्तर देंगे उनको तो वस्त्र तो नहीं मिलेंगे, संभावना नहीं है। सौभाग्य के कारण प्राप्त हुए आनंद से अभिभूत होकर अरे तू उत्तर दे दे, वो एक दूसरे को बोलती हैं अरे तू उत्तर दे दे, अरे सखी तू उत्तर दे दे। इस प्रकार धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति ही कहती रही, किंतु कौतुक के कारण किसी ने भी उत्तर नहीं दिया। परम सुंदर उन कुमारियों के मुख ने कमलों की सुंदरता को भी छीन कर दिया। इस प्रकार अपने नेत्रों को ऊपर की ओर उठाकर उत्तर ना देने का जो भाव था वो बहुत देर तक रस को प्राप्त होकर भी विरसता उत्पन्न कर रहा था। उत्तर नहीं दे रही हैं, कृष्ण की बातों का आनंद ले रही हैं, रस ले रही हैं, लेकिन फिर उससे भी क्या हो गया, एक निरसता पैदा हो गई कि अपनी ओर से हम कुछ नहीं बात कर रहे हैं तो उसमें भी तो एक क्या होता है, कुछ लज्जा आती है ना। तो ये समझ कर वे कन्याएं लज्जा को पार करके श्री कृष्ण से बात करने लगी। कृष्ण से बात करने का एक अलग ही रस है ना। तो वो अपने ओर से कृष्ण से बात नहीं कर रही हैं तो फिर उनको जो है आनंद नहीं मिल रहा है, इसलिए लज्जा को छोड़ करके अब उन्होंने क्या किया, कृष्ण से बात करने लगी। अतः से मंद मुस्कान से सफेद हुए दांतों की कांतियों से जो है उनका मुख परम मधुर हो गया। वे कुमारियां श्री कृष्ण के प्रति स्पष्ट बोली, हे महाशय हम सब आपको जानती हैं। क्या बोली, हे महाशय हम सब आपको जानती हैं कि आप ब्रज मंडल के राजा नंद जी के पुत्र हो, नीति के विद्वान हो, आप न्याय जानते हो, नीति के विद्वान हो, सर्वोत्कृष्ट गुणों के समुद्र हो। आप क्या हैं, सर्वोत्कृष्ट गुणों के समुद्र हो और करुणा की तरंगों से मिश्रित हो। आप ऐसे समुद्र हैं जिसमें करुणा की तरंगें उठती हैं। अपने अंग की शोभा से भूमि के मंगल का विस्तार करने वाले हैं। सच्चिदानंदमय शरीर के द्वारा सभी लोगों के नेत्रों को आनंद प्रदान करते हो, ब्रजमंडल को आनंदित करने वाले हो, सरल हो, संपूर्ण कीर्ति से युक्त हो, शस्त्र और शास्त्र के ज्ञान से संपन्न हो। आप क्या हैं, शस्त्र के भी पंडित और शास्त्र के भी पंडित हैं। अज्ञान का विनाश करने वाले हो, कौन कह रही हैं, कौन कह रहे हैं, हाँ ब्रज कन्याएं कह रही हैं, अज्ञान का विनाश करने वाले हो, इतने पर भी हाय क्या बड़े दुख की बात है, क्या इतने गुण हो करके भी क्या एक बहुत दुख की बात है, क्या हाय वस्त्र चुराना रूपी इस अतिशय महान अन्याय को क्यों कर रहे हो, आपका इतना गुण है, आप इतना न्याय करने वाले, आज इतना बड़ा अन्याय क्यों कर रहे हैं, क्या वस्त्र चुराना का रूप अन्याय क्यों कर रहे हो, और पूज्य पाद आप तो पृथ्वी का हित ही करते रहते हो, हाय आश्चर्य फिर आपने ये निंदनीय चरित्र का आचरण क्यों कर लिया। यदि कहो इसमें निंदा की कौन सी बात है, इसके उत्तर में हम कहती हैं कि व्रत के उद्यापन रूप महोत्सव में लगी हुई हम आपकी कृपा की पात्र हैं। आज तो व्रत का उद्यापन हम कर रहे हैं तो हमें आपकी कृपा मिलनी चाहिए, क्योंकि आपने हमारे इन परम सुंदर वस्त्रों को चुरा लिया है। हाय शोक तो इस बात का है कि तुम्हारी ये रसिकता तुम्हारे लिए शुभ उत्पन्न नहीं करेगी, अपयश उत्पन्न करेगी, तुम्हारी ये रसिकता तुम्हारे लिए अपयश उत्पन्न करेगी। अतः हे ब्रजराज कुमार, ब्रज की प्रशंसा पात्र, हमारे वस्त्र को लौटाकर प्रशंसा को प्राप्त कर लो। हमारे वस्त्रों को लौटा करके क्या प्राप्त कर लो, प्रशंसा को प्राप्त कर लो, इसलिए हमारे श्रेष्ठ वस्त्रों को दे दीजिए जिसे तुम्हारे उज्जवल समस्त यश उज्जवल हो जाएं। उसके बाद श्री कृष्ण उन गोपियों को लज्जा के भार से बारंबार पीड़ित करते हुए उनके प्रति बोले कि हे कमल मुखी कन्याओं, मेरी उक्ति मिथ्या प्रधान नहीं है, हाँ मिथ्यावादी लोग तो अपने झूठ को भी सत्य बताते हैं, किंतु मेरा जो वचन अमृत है वो सत्य है, ये बात सुप्रसिद्ध ही है। मेरा जो वचन है वो क्या है, अमृत है और क्या है, सत्य है, ये बात सुप्रसिद्ध ही है, क्योंकि मैं तो हास परिहास के द्वारा भी सत्य को छिपाता नहीं हूँ। भगवान क्या कह रहे हैं, हंसी मजाक में भी मैं सत्य को नहीं छिपाता, भगवान कह रहे हैं। इस समय तुम सब व्रत धारण करने वाले हो, अतः तुम्हारे साथ परिहास करना विशेष करके अच्छा नहीं है, है ना। इसमें परिहास है और बहुत गंभीरता भी है, कृपा भी है, तुम्हें परिहास नहीं कर रहा हूं, है ना। कहने का मतलब है कि तुम जो चाहती हो तो मैं वही कर रहा हूं, तो इसमें परिहास भी नहीं है। हाँ, मैंने भलाई के साथ तुम्हारे प्रति ये जो कहा कह दिया कि तुम सब यहाँ आकर अपने अपने वस्त्रों को अनायास ले जाओ, ये मेरी बात कदापि मिथ्या नहीं हो सकती। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ना दूं तुम्हारे वस्त्र? अगर तुम यहाँ आओगी तो मैं तुम्हारे वस्त्र ना दूं, ये मिथ्या नहीं हो सकता। ये गोप कुमारी अपना, हे संताप को हरने वाले, हे अधर्म का विनाश करने वाले श्याम, हाय हाय, तुम धर्म के मार्ग पर क्यों नहीं चलते हो? सज्जन, तुम हंसी से भी इस प्रकार नहीं कहते, आप स्वभाव से ही दयालु हैं, किंतु दूसरे के दुख का अनुभव ना करने वाले आप की दया का लेस भी हमारे ऊपर क्यों नहीं है? आप हमारे कष्ट को क्यों नहीं समझ रहे हो? आप सब पर दया करते हो और हमारे ऊपर दया की एक बूंद भी नहीं आप दे रहे हैं, क्योंकि इस समय हम अतिशय शीतल यमुना जल में गोता लगा रहे हैं, महान कंपित हो रही हैं, हमारी बुद्धि विकल हो रही है, इस बात को आप नहीं जानते हो या विचार नहीं कर रहे हो, इस बात का विचार नहीं कर रहे हो, इसलिए हम सब अतिशय शीतल जल वाली इस यमुना में हाय भले ही मर जाएंगी, किंतु नग्न अवस्था वाली तुम्हारे निकट नहीं आएंगी। क्या नग्न अवस्था में तुम्हारे पास नहीं आएंगी? हम तो मर जाएंगे, पानी जल में ही मर जाएंगे। उद्विग्न करने वाले तुम्हारे निकट नहीं आएंगे, क्योंकि उच्च कुल में उत्पन्न होने वाली कुलंगनाओं की कुल की जाति का यही स्वभाव है। हाँ, हम लोग श्रेष्ठ कुल की कन्याएं, तुम्हारा ये गूढ़ अभिप्राय ही हमने देख लिया अर्थात समझ लिया। इसलिए हे रूखी बात बोलने वाले श्याम, अब तो चुप हो जाइए, हम आपको प्रणाम करती हैं, अपने वचन से हमको मोहित ना कीजिए। इस प्रकार के परिहास में आप चतुर हैं, और चंद्रमा आपका जो मुख है शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को तिरस्कृत करने वाला है, तो आपके मुख से तो अमृत मैं प्रिय वचन निकलने चाहिए, ये भिस क्यों निकल रहा है आपके मुख से? आपका मुख चंद्रमा के समान है और चंद्रमा से क्या निकलता है? अमृत निकलता है, तो आपके मुख से तो अमृत निकलना चाहिए, लेकिन हम सब तो आपकी दासियां ही हैं, अतः हमारे मन की परीक्षा लेने के लिए आप जब जो आज्ञा देंगे हम उसी का पालन करेंगे। वस्त्रों के ग्रहण रूप इस महान ऐश्वर्य को छोड़ दीजिए, निश्चित रूप से धर्म के मार्ग का अनुसरण कर लीजिए, और रसमय परिहास रूप अमृत के लिए कूप का सा व्यवहार ना कीजिए। कुआं परिहास रूपी अमृत का के लिए कुएं का व्यवहार ना कीजिए। कुएं का व्यवहार क्या होता है? जितना पानी निकालो उसमें पानी आ जाता है और पानी आ जाता है, है ना। तो आपका जो है जो ये हंसी का जो है भाव है ये निकलता ही जा रहा है, निकलता आप करते जा रहे हो, है ना। तो कुएं जैसा व्यवहार ना करिए, उसी प्रकार आप अनंत प्रयास ना कीजिए। कृपया हमारे वस्त्रों को हमारे पास भेज दीजिए, बालक होने के नाते लज्जा कि शंका जिन में नहीं है, इन छोटे छोटे बालकों द्वारा ही भिजवा दीजिए। ये छोटे छोटे बाल हैं, हैं, तो इनको इनके लिए लज्जा की आशंका नहीं है, इनके हाथों भिजवा दीजिए। आप आने का कष्ट ना कीजिए, आपके पास जो हमारे वस्त्र हैं ये भिजवा दीजिए, किनके द्वारा? इन चार छोटे छोटे बालकों के द्वारा भिजवा दीजिए। इस प्रकार उन कुमारियों की प्रीति पूर्वक वाणी जब समाप्त हो गई, तब अपने को चतुर मानने वाली और मूर्तिमती किन्नरियों के समान ब्रज कन्याएं स्पर्श स्वर से बोलने वाली वीणा के समान सुमधुर कंठ के स्वर से युक्त होकर अपने अनुराग को प्रकट करके साहस पूर्वक शीघ्रता से, हाय कष्ट की बात है, धर्म के मार्ग का कौन निश्चय करे? ये गोकुल नगरी इस प्रकार के भारी अन्याय से कभी भी पीड़ित नहीं हुई, आतंकित नहीं हुई, पहली बार गोकुल के इतिहास में इतना बड़ा अन्याय हुआ है, पहली बार हुआ है, क्योंकि ये नगरी तो अपनी लोकोत्तर शोभा से स्वर्ग को भी तिरस्कृत करने वाली है। स्वर्ग से श्रेष्ठ है गोकुल नगरी, अर्थात स्वर्ग से भी सुंदर है और परम सुख देने वाली है। अन्याय उपस्थित होने पर उस अन्याय को दूर करने के लिए जिससे निवेदन किया जाए वही अन्यायकारी हो गया। अन्याय होने पर जिससे शिकायत की जाए तो वही अन्याय करे। हाय इस ब्रज नगर में ये कौन सी रीति उपस्थित हो गई है। हे ब्रजराज नंदन, हम आपके साथ दासियों का सा व्यवहार कर रही हैं। देखो यदि प्रसन्नता पूर्वक हमारे वस्त्रों को नहीं देते हो तो तुम्हारे अन्याय के कारण इससे चढ़ करके ब्रजराज नंद जी से तुम्हारी शिकायत हम कर देंगी। भाई दिखाया, हम शिकायत कर देंगे। इस ये सुनकर रस कौतुकी वे श्री कृष्ण मंद मुस्कान रूपी हार से युक्त होकर पुनः बोले, हे गोप कुमारियों, देखो मेरे द्वारा कहे गए प्रीति से युक्त इस प्रिय वाक्य को तुम सब खंडित मत करो। भगवान क्या कह रहे हैं, मैं जो तुमसे कह रहा हूं ये प्रेम की बात कह रहा हूं और इसको तुम खंडित मत करो। यदि तुम सब मेरी दासियां हो, मेरे मुख्य वचन को भी यदि पालन करोगी तब परम उचित छल रहित एवं हितमय मेरे इस वचन का पालन क्यों नहीं करती हो। मेरे बात में तुम्हारा हित है और किसी प्रकार का छल नहीं है, क्योंकि दासियां अपने स्वामी के प्रिय और अप्रिय किसी प्रकार के वचन को खंडित नहीं करती हैं। दासियों का ही धर्म है कि स्वामी का वचन प्रिय हो या अप्रिय हो वो पालन करती हैं। तो तुम दासियां, और उन दासियों का ऐसा कौन सा पदार्थ है जो अपने स्वामी के लिए ना दिया जाए, ना दें, दासियां हैं। इसलिए दोनों प्रकार से अर्थात अपने मुख से स्वयं स्वीकृत मेरे दासीपन से अथवा मेरे वचन के पालन रूप कारण से यहां आकर वस्त्रों को ले जाओ। तुम अपने को दासी मानती हो तो भी तुम्हें ये कार्य करना है, और अगर तुमने स्वयं अपने वचन दिया है कि हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगी तो अपने वचन को पालन करने के लिए भी ये कार्य करो, अर्थात यहां आकर वस्त्रों को ले जाओ। अपने कुल को कलंकित मत बनाओ। अब वो तो है, उन्होंने तर्क दिया था कि हम इतनी कुलवती हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकती हैं, लेकिन भगवान ने दूसरी तरह से उनको जो है दूसरी तरह से तर्क दिया कि तुम अपने कुल को कलंकित कर रही हो, क्योंकि तुमने वचन दिया कि तुम मेरी आज्ञा पालन करोगी, अब नहीं कर रही हो तो तुम अपने कुल को कलंकित कर रहे हो, है ना। तो भगवान ने दूसरी तरह से तर्क दे दिया, यदि ऐसा नहीं करती हो तो मैं तुम्हारे वस्त्रों को नहीं दूंगा। राजाधिराज मेरे पिता मेरे ऊपर परम वात्सल्य रखते हैं। उनसे तुम शिकायत करोगी, राजाधिराज मेरे पिता से, तो मेरे पिता मेरे ऊपर परम वात्सल्य रखते हैं, वे मेरे लिए कुपित होकर भी बाधा पहुंचाएंगे क्या, है ना। क्यों, क्योंकि कृष्ण की इतनी छोटी अवस्था है, नंद यशोदा तो सोच ही नहीं सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, है ना। तो अचिंत लीलाएं हैं, अर्थात नहीं, तुम अज्ञान से युक्त हो जो इतना भी नहीं जानती हो। इस प्रकार श्री कृष्ण के आग्रह से पूर्ण उस समय के वचन को नवीन गोप कुमारियों ने अपने कानों के द्वारा बार बार ग्रहण करके प्रेम के और बहुत दिनों से संचित भक्तजन वांछनीय परम दुर्लभ श्री कृष्ण के भजन के भाजन और सम्मान से और प्रेम के कारण इससे आगे दुर्लभ श्री कृष्ण के वाक्य की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कृष्ण का संग आगे ऐसा नहीं मिलेगा, दुर्लभ है संग। तो ये मान करके और ये वाक्य खंडित नहीं हो सकता, क्योंकि हम तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारे कथन का पालन करेंगी, इस प्रकार हम स्वयं कह चुकी हैं। अब स्वयं विचार करने लगी कि हाँ ठीक कह रहे हैं कृष्ण, कि हम तो अपना वचन दे चुकी हैं कि हम तुम्हारी दासी हैं, हम तुम्हारे वचन का पालन करेंगी, हैं। अतः हमारे पास कोई अब प्रत्युत्तर नहीं है सिवा इसके कि वचन का पालन करें। अब हमारे पास कोई उत्तर नहीं है। इस प्रकार का विचार करने वाले अपने प्रेम के वेग से लज्जा की उपेक्षा करके यमुना जल की देवियों की तरह उन कुमारियों ने जल से एक साथ उठने के लिए उपक्रम कर दिया, जल से एक साथ निकलना आरंभ कर दिया। अपने दोनों कंधों से वक्षस्थल के ऊपर झूलने वाले गिरे हुए लंबे केश पासों के द्वारा अपने अग्रभाग को ढकती हुई आ गई। तो अपने उनके जो लंबे बाल थे वो कहाँ तक लटक रहे हैं, वक्षस्थल को ढके हुए हैं। इस प्रकार आ गई और चंद्रमा जैसे अंधकार से घिरा हो ऐसे उनके मुख चंद्रमा के समान और बालों के अंधकार से घिरी हुई चंद्रमा के समान प्रतीत हो रही थी। फिर लज्जा ने और सर्दी ने भी उनके दोनों चरणों में बहुत देर में चलने की मंदता प्रकट कर दी। लज्जा के कारण भी पैर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, सर्दी के कारण भी पैर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और हर्ष के कारण उनके शरीर में रोमांच का विस्तार कर दिया। हर्ष और जाड़ा दोनों के कारण शरीर में रोमांच हो गया, और लज्जा उत्कंठा दोनों ने उनको चलने और ना चलने के लिए क्या कर दिया, मतलब परस्पर विरोधी भाव। जो लज्जा है उनको चलने से मना करती है, और उत्कंठा है जो उत्कंठा उनको आगे बढ़ा रही है, तो इस दोनों में फंस गई वो। अब वो न चल पा रही हैं न रुक पा रही हैं, क्योंकि उत्कंठा उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है और लज्जा उनको मतलब पीछे जाने के लिए। तो इस प्रकार से एक युद्ध है, लज्जा उत्कंठा में युद्ध छिड़ गया। उसमें लज्जा बलवती होकर गोपियों को पीछे की ओर खींचने लगी, उत्कंठा बलवती होकर श्री कृष्ण की ओर खींचने लगी, अंततो गत्वा उत्कंठा की ही विजय हुई। लज्जा उनको पीछे की ओर खींच रही है, उत्कंठा कृष्ण की ओर खींच रही है, अंत में किसकी विजय हुई, उत्कंठा की विजय हुई। किंतु नाभि पर्यंत जल में कुछ दूर जाकर, अब कंठ से पानी कहाँ आ गया, नाभि में, नाभि पर्यंत जल में कुछ दूर जाकर हाय लज्जा की भर्सना के कारण उन कुमारियों का आपस में उपहास सूचक, अरे सखी तू पहले चल। अब क्या बोलती हैं, अरे सखी तू पहले चल, नहीं आप पहले चलो, अरे सखी देख तू अकेली जा, तू ही क्यों ना चली जा, तू चली जा, नहीं सखी तू जा, तू जा। इस प्रकार एकांत के कारण आपस में तर्क वितर्क होने लगा। समान बलवान सौभाग्य के द्वारा श्री कृष्ण के द्वारा आकर्षित की गई, सबका समान सौभाग्य था। उन कुमारियों में से उनके निकट कोई भी नहीं गई, किंतु सभी कुमारियां नीचा मुख करके प्रेम से द्रवीभूत हृदय वाली होकर लज्जा के कारण हर्ष से युक्त होकर और कुछ नीचे की ओर कुछ ऊपर की ओर, नीचे कभी और नेत्र ऊपर की ओर और कभी नीचे की ओर, बड़े कष्ट से वहां पर आ पहुंची। इस प्रकार निकट में आने वाली और लज्जा के भार से दबी आगे आगे आने वाली कुछ कुमारियों के द्वारा छिपे हुए अंगों वाली वो जब आ रही हैं, तो कृष्ण बोले, अरे कन्याओं मेरे निकट भय क्यों कर रही हो, और अपने शरीर को छिपाने के लिए कैसे योग्य हो सकती हो, क्योंकि अतिशय ऊंचे वृक्ष पर भली तरह बैठा हुआ मैं तो सबको भली प्रकार मानो निकट से ही देख रहा हूं। इस प्रकार की धोखेबाजी से क्या प्रयोजन है, कृष्ण कह रहे हैं, निसंकोच श्रेणीबद्ध होकर बहुत सी लंबी पंक्ति बनाकर तुम लोग खड़ी हो, एक एक की पंक्ति बनाओ, और अपने अपने वस्त्रों को ग्रहण करने के विषय में ये तुम्हारी चतुराई बन जाएगी, ये तुम्हारी योग्यता होगी, अन्यथा पीछे खड़ी होने वालियों को वस्त्र लेने में और वस्त्र पहनने में असुविधा ही होगी, इसलिए अब मेरे वचन से अपने वस्त्र ग्रहण कर लो। कानों के हितकारक और बुद्धि के लिए भी रस प्राप्त होने लगा उस समय पीछे खड़ी होने वाली दूसरी कुमारियां भी श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार यथा योग एक ही पंक्ति बनाकर खड़ी हो गई, एक लाइन। वे समस्त कुमारियां उनके कथानुसार जब उसी प्रकार खड़ी हो गईं, तब पीताम्बरधारी श्री कृष्ण सुप्रसन्न होकर तनिक हंसकर उनके वस्त्रों को कंधे पर धरकर मानो अपने नेत्र के द्वारा उनके मुख सौंदर्य का पान करके उनके नेत्रों के लिए परम रमणीय होकर लज्जा से पीड़ित हुई उन गोप कुमारियों के प्रति पुनः बोले, अरे गोप कुमारियों, तुम्हारा ये आचरण शास्त्र विरुद्ध है। देखो खुले हुए चारों ओर फैले हुए केशों के इस प्रकार के भाव से खड़े होना दरिद्रता का चिन्ह है। एक व्रत में स्थित रहने वाले के लिए खुले केशों से बड़ी निंदा की बात है। खुले केश होना एवं खुले हुए केशों वाली स्त्रियां तो साधारण व्यक्ति के निकट जाने के योग्य नहीं होती, फिर परम आदरणीय जन के निकट आने के योग्य कैसे हो सकते हैं? इसमें क्या कहा जाए? तुम्हारे जो केश खुले हैं ये तुम्हारे लिए जो है ये अशुभ है। हाय सुंदर केशों वाली गोपियों, बताओ अपने हित को कौन विनष्ट करता है? और देखो खुले हुए केश तो देवताओं की लक्ष्मी को भी विनष्ट कर देते हैं। अतः अपने मुख की शोभा से पूर्ण चंद्र को तिरस्कृत करने वाली कुमारियों, अपने अपने केशों को बांध लो। इस प्रकार कमल नयन श्री कृष्ण के वचन, जो कि कानों को विशेष प्रिय था, आतंक को दूर करने वाला था, कला कौशल से युक्त था, सुनकर सभी गोप कुमारियां लज्जा रूप समुद्र में गोता लगाकर विशुद्ध भाव से युक्त होकर भली प्रकार सिकोड़ी हुई जंघाओं के द्वारा प्राप्त हुई। अपने अपने दोनों हाथों के द्वारा बांधने की कला से केश कला बांधने लगी। उनके दोनों हाथ चलते हुए कंकड़ों की झंकार के कारण श्री कृष्ण के कानों को हर्ष दे रहे थे। कुमारियों का वक्षस्थल किंचित विकसित हो रहा था, उनका मन भी प्रेम रस से उल्लसित हो रहा था। उसके बाद गोप कुमारियों के बंधु श्री कृष्ण अपने वचन के पालन से उनके ऊपर प्रसन्न हो गए, आनंद से चंचल होकर पुनः, आहा हे गोप कुमारियों, देखो अपने आदरणीय व्यक्ति के आगे दूसरे सामान्य जन का इस प्रकार बैठे रहना विशेष सुशोभित नहीं होता। आप सब इसलिए उठकर खड़ी हो जाओ और मेरे आज्ञा में स्थित हो जाओ और मेरी आज्ञा रूप इस आसन पर बैठ जाओ आज्ञा में। इस प्रकार श्री कृष्ण के मुख चंद्र से निकली हुई अमृत के सार की तरह अधि रस मैं वचन को आनंद से पी करके भयभीत होकर भले बुरे विचार को छोड़कर सहसा आदर पूर्वक घुटनों के ऊपर घुटना रखकर परस्पर में कर कमलों द्वारा अपनी अपनी जंघाओं को ढककर वे कुमारियां कुछ विनम्र होकर एक साथ खड़ी हो गईं। फिर भगवान हंसकर अति सरस वाणी से बोले, यहां हमें देखना चाहिए भगवान का जो व्यवहार है ये बहुत कोमल है। भगवान का जो व्यवहार है वो इस प्रकार का नहीं है कि वो जो है उनको कष्ट देना चाहते हैं, उनको पीड़ा देना चाहते हैं, उनको सुख देने के लिए भगवान ऐसा कह रहे हैं। अतिशय सरस वाणी में भगवान बोले, अहो हे गोप कुमारियो, देखो तुम्हारा संपूर्ण चरित्र सज्जनों के अनुसार नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति व्रत में तत्पर होते हैं वस्त्रों को फेंक कर नग्न होकर स्नान नहीं करते हैं, नग्न होकर जल में उतरने पर यमुना में जो जल की अधिष्ठात्री देवी है अतिशय तिरस्कृत हो जाती है, एवं हे गोपियों, देवताओं की जो अवहेलना है उससे कामना की पूर्ति नहीं होती है। अज्ञात रूप में तुम्हारा द्वारा ये अपराध हुआ है, अनजाने में तुमसे अपराध हुआ है। अस्तु अभी अत्यंत दुर्लभ व्रत के फल को सफल बनाने के लिए यदि तुम्हारे हृदय में इच्छा है, व्रत के फल की प्राप्ति के लिए यदि अधिक इच्छा है, तब तो उस अपराध को दूर करने के लिए व्यवहार करो, उस विषय में कोई उत्तम उपाय हमारे पास है। ये बात सुनकर कुमारियां शांति परायण व्यक्तियों की तरह सहसा विचार करने लगी। हमारे प्यारे श्री कृष्ण ने जो जो वचन कहा हम सबने यहाँ पर उसको हर्षपूर्वक पालन किया, किंतु हाय इससे आगे अब यहाँ क्या कहेंगे, उनको डर लग रहा है, उसको हम नहीं जानती हैं। यदि इनका वचन पालन नहीं किया जाता है तो इस व्रत के द्वारा हमारी बाधा का भय है, ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर क्या करें। इस प्रकार परस्पर एक दूसरे को देखती हुई प्रिय की उस प्रकार की दृष्टि से हर्षित होकर अब आगे क्या होगा, कुछ भयभीत होकर वो जो है खड़ी हैं रही, तो मानसिक ग्लानि का अनुभव लगाकर निष्कपटता का आश्रय लेकर श्री कृष्ण पुनः बोले, अरे ब्रज बालाओ, पाप को चुराने वाली मेरी वाणी को सुन लो। बताओ जल के बिना प्यास को दूर भगाने का कोई दूसरा उपाय संसार में है क्या? उसी प्रकार मेरे वचन के पालन किए बिना तुम्हारा अपराध दूर नहीं होगा, इसलिए तुम सबको मेरे उपदेश का पालन करना चाहिए। अतः देखो केवल मेरे लिए ही जो प्रणाम करता है उसका फल पापों को दूर करता है, और मेरे लिए श्रद्धा पूर्वक किया गया प्रणाम तो अनेक प्रकार के मंगलों का कारण है। अतः कुमारियों अपने अपने मस्तकों के ऊपर उंजली बांध कर अपने देह को बिल्कुल सीधी करके हर्ष पूर्वक साक्षात मुझे प्रणाम कर लो। अब प्रीतम के वचनों को आगे रखकर लज्जा को पीछे पटक कर सीधी होकर खड़े होकर नेत्रों को तनिक मूंद कर अपने हाथों की अंजलि को मस्तक के अग्रभाग में धारण करते हुए श्री कृष्ण को उन्होंने प्रणाम कर दिया। तब अपनी आज्ञा के अनुसार आचरण करने वाली और काठ की पुतली की तरह नचाई जाने वाली और विनम्र मुख वाली उन कुमारियों के ऊपर श्री कृष्ण प्रसन्न मन होकर बोले। अपने हाथ में समस्त वस्त्रों को भगवान लिए थे, वस्त्रों को देने के लिए अपने कंधे से हाथ में धारण किए थे। उनका अंतःकरण प्रेम रस से उत्कट हो रहा था, उनका चित्त प्रेम से पिघल रहा था। इतने पर भी उनके अधर मंद मुस्कान से कुछ हंसते हुए उनसे बोले, अरे गोप कुमारियों, देखो तुम्हारी शोभा को पुष्ट करने वाले तुम्हारे निष्कपट भाव से मैं अब तुम सब पर प्रसन्न हो गया हूँ। इसलिए अपने अपने कर कमल को ऊंचा उठा लो और अपने वस्त्र ग्रहण कर लो और पहन लो। इस प्रकार कहकर तथा उनके कहते ही कर कमल को ऊपर की ओर उठाने वाली और लक्ष्मी से भी अधिक सौभाग्य वाली उन कुमारियों के लिए श्री कृष्ण ने प्रत्येक के प्रति अपने कर कमल के द्वारा उनके सुंदर वस्त्र इस ढंग से समर्पित किए कि उस समय उन्होंने अपने अपने वस्त्र को ही प्राप्त कर लिया। भगवान के पास ऐसी योग्यता है ना, अर्थात दूसरे का वस्त्र दूसरे के पास नहीं पहुंच पाया, यही प्रभु की सर्वज्ञता। एक साथ उन्होंने सबके वस्त्र दे दिए। इसके बाद वे कुमारियां, उस समय वे कन्याएं सर्वोत्कर्ष पा रही थीं। पूर्ण आनंद से युक्त वे गोप कुमारियां श्री कृष्ण के कर कमल के द्वारा आदर पूर्वक थोड़ी सी लज्जा के द्वारा तनिक सम्मुख दर्शन से पुलकावली से व्याप्त शरीर वाली होकर आनंद का अनुभव करने लगी। क्षण भर खड़ी रही, किंतु गोपराज युवराज वे श्री कृष्ण अपने गांभीर्य की रक्षा ना कर सके। परम कोमलता से युक्त होकर दया पूर्वक बोले। भगवान का व्यवहार इतना कोमल है, इतना दयापूर्ण है कि उनको बहुत सुख मिला है। हे गोप कुमारियों, देखो तुम्हारा ये जो संकल्प है वो मेरे चित्त में पहले से ही आ गया है। तुम्हारे मन का संकल्प मैंने तो पहले ही जान लिया है, तुम्हारे निष्कपट प्रेम की परीक्षा भी ले ली। ये परीक्षा है ना, प्रेम की परीक्षा है, क्योंकि तुम सबने मेरे हित में वचन का पालन किया है और तुम्हारी कोई प्रतिकूलता भी सम्मत नहीं हुई, यानी तुम नाराज नहीं हुई। जहां नाराज होने की बात हो वहां भी नाराज ना हो तो बड़ी बात है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें जो कुछ भी आदेश दिया तुमने पालन किया आदेश का और तुम नाराज नहीं हुई हैं? इसलिए तुम्हारा ये मनोरथ नित्य सत्य है अर्थात प्रेममय है, मेरा ये स्वभाव है। देखो मैं परम महान आनंद स्वरूप हूँ, अतः विशुद्ध हृदय वाले जनों के द्वारा मेरे में स्थापित हुए काम मैं अनुराग को आनंद रूप अमृतमय बना देता हूँ। हर किसी के अंदर कुछ ऐसी कामना भी है, भौतिक कामना भी हो कृष्ण को लेकर के, तो वो भी क्या बन जाता है, आनंदमय बन जाता है ना। भौतिक संसार में वो कामना जो है क्या होता है, क्रोध का रूप धारण करती है, उसमें तो कष्ट ही कष्ट है, लेकिन वही कामना कृष्ण के प्रति अगर की जाए तो क्या बन जाता है, आनंदमय बन जाता है। भगवान कहते हैं मुझे सुख देने की भावना से तुमने अपना स्वभाव प्रकट किया और तुम सब तो स्वभाव से सिद्ध हो, अतः तुम्हारा जो ये स्वभाव है, तुम्हारे जिस स्वभाव को तो लक्ष्मी भी चाहती रहती है, लक्ष्मी भी चाहती है तुम्हारा स्वभाव। देखो कितना सौभाग्य है। भगवान क्या कर रहे हैं, लक्ष्मी जी भी चाहती हैं, तुम्हारे स्वभाव को चाहती हैं, उसकी प्राप्ति की प्रार्थना भी मुझसे करती हैं। लक्ष्मी जी भी क्या गोपी भाव को पाना चाहती हैं। गोपी भाव इतना ऊपर है, लक्ष्मी के भाव से ऊपर है। तो भगवान कह रहे हैं कि लक्ष्मी भी तुम्हारे स्वभाव को प्राप्त करना चाहती हैं। लक्ष्मी भी चाहती रहती हैं, उसकी प्राप्ति की प्रार्थना भी मुझसे करती रहती हैं। क्या लक्ष्मी जी गोपी भाव को प्राप्त करने की प्रार्थना करती रहती हैं। गोपी भाव, और देखो मैं परम रस का समुद्र हूँ, अतः मुझ में सामान्य व्यक्तियों के काम आदि भाव भी अंकुरित नहीं होते हैं। भगवान में नहीं होता है, है? नग्न स्त्री को देखने से सामान्य व्यक्ति के अंदर काम भाव उत्पन्न होता है, तो भगवान कितने मुझ में नहीं होता। जैसे उबाले हुए या भुने हुए जो आदि धान बीज का आचरण नहीं करते, अगर बीज उबल जाए या भुन जाए तो अंकुरित नहीं होता है, है? उसी प्रकार जिन्होंने अपना मन प्राण मुझ में समर्पित कर रखे हैं, उनकी काम भावना उनको सांसारिक भोगों की ओर ले जाने में समर्थ नहीं होती है। प्रीतम के वचन अमृत को सत्य ही मानती हुई अपरिमित हर्ष के से उत्कंठित मन वाली होकर उनके नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे। किनके नेत्रों से? उन कन्याओं के, ब्रज कन्याओं के। वे कुमारी क्षण भर तो निरुत्तर होकर ही कुछ नेत्र पूंज कर खड़ी रही, कुछ उत्तर नहीं दिया, आंखें बंद करके खड़ी रही, भगवान की बात का आस्वादन कर रहे हैं। उसके पश्चात काम आदि शत्रुओं को जीतने वाले श्री कृष्ण सर्वोत्तम प्रेम के कारण उन कुमारियों के प्रति बोले। भगवान ने कुछ बातचीत की तो फिर वे बोल रहे हैं, अरे सखी प्रीतम के वचन सुन रही है क्या? यदि सुन रही है तो कुछ प्रत्युत्तर भी दे दे। आपस में बोल रही हैं, क्या करें, प्रीतम के वचन तो सुन रही है तो कुछ उत्तर भी दे दे। अरे मैं तो प्रत्युत्तर देने में समर्थ नहीं हूं, यदि तेरी उत्कंठा है तो तू ही निसंग होकर उनसे कुछ पूछ ले। आपस में बोल रहे हैं। इस प्रकार उनका परस्पर धीरे धीरे वार्तालाप भी हुआ। श्री कृष्ण पुनः, अरे गोप कुमारियों देखो अब तो तुम ब्रज में अपने अपने घर चले जाओ, एवं आगे निकट में ही आने वाले आनंद देने वाले जो रात्रियां हैं उनमें मेरे साथ विहार करना, और तुम सब तो नित्य सिद्ध हो, इसलिए थोड़ी सी भी रुकावट या अड़चन नहीं आएगा। इस प्रकार आश्वासन प्राप्त करके वे कुमारियां अपने 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 घर की ओर गई, कष्टपूर्वक ही ब्रज में गई। श्री कृष्ण का जो है संग छोड़ करके जब जाती हैं ब्रज में तो उनको बड़ा कष्ट होता है। तो आज के दिन की ये कथा है, आज के दिन जो है ये लीला हुई थी, तो हमने जो है ये सुनी ये कथा, ये आनंद वृंदावन चंपू है, बहुत सुंदर कथा है, ठीक है। तो किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूँ? आज की कथा, आज बहुत पवित्र दिन है, मैं प्रश्न करूँ? भगवान ने कहा कि किसी का अगर कुछ काम, मतलब भौतिक कामना भी जो है अगर हो जाए मेरे प्रति, मतलब मुझसे जुड़ जाए, तो उसकी कामना जो है फिर और कामनाएं नहीं पैदा करती है। जैसे उदाहरण क्या दिया, उदाहरण बीज का उदाहरण दिया कि बीज जो है अगर भुन जाए तो अंकुरित नहीं होता, तो उससे और बीज नहीं पैदा होंगे, है ना। तो अगर भौतिक कामना भी अगर कृष्ण के प्रति अगर की जाए, भाई कृष्ण को पति बनाना है ना, जैसे कोई स्त्री जो है किसी पुरुष में आकर्षित होती है ना, तो उस कामना से और कई कामनाएं पैदा होंगी, क्योंकि वो बीज जो है फिर अंकुरित होगा, है ना, उससे कई बीज पैदा होंगे। लेकिन कृष्ण के प्रति एक कामना कर ली कि हमारे पति हों, तो उससे फिर और अन्य कामनाएं पैदा नहीं होंगी, क्योंकि वो बीज क्या होता है, भुन गया या उबल गया, अब उससे और बीज पैदा नहीं होंगे, है ना। तो भगवान ने ये बताया, इसलिए दिव्य घटना है। और जैसे देवी की पूजा, भगवान तो गीता में निंदा करते हैं देवताओं की पूजा की, देवी देवताओं की पूजा की निंदा करते हैं, इन्होंने जो पूजा की देवी की, कात्यायनी देवी की, उसकी प्रशंसा, इसका क्या कारण कौन बताएगा? हाँ जी, हाँ, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, तो इसलिए कृष्ण जो है निंदा करते हैं देवताओं की पूजा की, लेकिन इस पूजा की निंदा नहीं करते, इस पूजा की प्रशंसा कर रहे हैं, है ना, क्योंकि इसमें वो कृष्ण से प्रेम कर रही हैं और कृष्ण का गुणगान कर रही हैं और कृष्ण में ही अपने मन को लगाए हुए हैं, पूजा कर रही हैं देवी की, इन कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, है ना। तो ये पिण्य देवता भक्ता, भगवान ने कहा है ये पिण्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता, अन्य देवताओं के भक्त हैं वो श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, तो वो मेरी पूजा कर रहे हैं, अविधि पूर्वक पूजा कर रहे हैं, तो भगवान ने निंदा की है कि विधि पूर्वक नहीं है, वो मेरी पूजा की विधि नहीं है, है ना। लेकिन ये जो देवियां हैं, जो कन्याएं हैं, ये पूजा कर रहे हैं देवी की, लेकिन कृष्ण का ही गुणगान करती हैं, कृष्ण का ही चिंतन करती हैं, पूजा के समय भी कृष्ण का ही चिंतन कर रही हैं कि कृष्ण कैसे प्राप्त होंगे, है ना, और प्रार्थना कर रही हैं कृष्ण को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कर रही हैं, इसलिए इनका इनका जो है बहुत बड़ा गुण है, है ना। ये हाँ जी,
देवी देवताओं से प्रार्थना करनी है तो भगवान की भक्ति के लिए हमको प्रार्थना करें तो वो पॉजिटिव।
हाँ, आपका प्रश्न काम का शुद्ध रूप है,
ये
भौतिक संसार में, हाँ तो वो प्रेम का विकृत रूप काम है, प्रेम वही प्रेम जो है विकृत रूप में काम बन जाता है, जैसे दूध में जो है खटाई का मिश्रण हो जाए तो वो जो है काम बन जाता है, इसी प्रेम में रजोगुण खटाई के समान है, तो रजोगुण मिश्रण हो जाता है प्रेम में तो काम बन जाता है, विकृत हो गया वो, ठीक है ना। ये वो प्रेम है, ठीक है ना, वो प्रेम। धन्यवाद श्री, हाँ जी आपका प्रश्न, अच्छा हाँ क्षमा करना।